धूमज्योतिः सलिलमरुताम् सन्निपातः क्वमेघः सन्देशार्धा क्वपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्युक्त्वादपरिगणयन् गुह्यकः संययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। अन्वयः धूम ज्योतिः सलिलमरुताम् सन्निपातो मेघः क्व पटुकर्णे प्राणिभिः प्रापणीया सन्देशार्थः क्व इत्युक्त्वात् अपरिगणयन् गुह्यकः तं ययाचे हि कामार्ता चेतना चेतनेषु प्रकृतिकृपणाः। व्याख्या धूमज्योतिः सलिलमरुताम् धूम तेजो जलवायुनाम सन्निपातः समूह मेघः जलधरः क्व कुत्र पटुकरणे कार्य समर्थेन्द्रियैः प्राणिभिः चेतनैः प्रापणीया प्रापयितव्याः सन्देशार्था सन्देशाभिधेयाः क्व कुत्र वयोर्महत् अन्तरम् इति भावः इति एवम् औचुक्यात् इष्टार्योद्युक्तत्वात् अपरिगणयन् अविचार्यन् गुह्यकः यक्षः तं मेघं याचे याचितवान् दयिताम् प्रति मत्सन्देशम् प्रापयति प्रार्थितवान् इति भावः। उक्तम् अर्थम् अर्थान्तरन्यासेन दृढयति कामार्ता इति हीयतः कामार्ताः मदनातुराः चेतनाचेतनेषु जीवाजीवेषु प्रकृतिकृपणाः स्वभावदीनाः कामान्धानाम् उचितानुचित विवेकशून्यत्वाचेतनम् मेघम् प्रति याञ्चाया नानुपत्तिरिति भावः। भावार्थः धूमतेजो जलवातानाम् समूहरूपो चेतनो मेघः कुत्र कुशलेन्द्रियुक्तचेतनैः प्रापयितव्यानि सन्देशवचनानि कुत्र एवम् उत्कण्ठया हेतोरविचारे यन्यक्षो मेघम् प्रार्थितवान् यतो मन्मथा कुलाश्चेतनाश्चेतनयोर्विवेकशून्या भवन्ति। अनुवादः कहाँ तो धुआं तेज जल और वायु के समुदाय से उत्पन्न जड़ मेघ और कहाँ कुशल इंद्रियों से युक्त प्राणियों से भेजे जाने वाले संदेश के वचन उत्कंठा के कारण इस बात का विचार न कर यक्ष ने मेघ से याचना की क्योंकि काम से आकुल जन चेतन और अचेतनों के विवेक में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। टिप्पणी धूमज ज्योतिष सलिल मरुताम धूमश्च ज्योतिश्च सलिलञ्च मरुच्च धूमज्योतिः सलिलमरुतः तेषां चार्थे द्वन्द्वः इस सूत्र से यहाँ पर इतरेतर द्वन्द्व समास हुआ है। सन्निपातः सन्धन्नि धनपत धनघय जकट में भावे पटुकर्णय क्रियन्ते एभिः एति कर्णानि दुक्रिय धातु से कर्णाधिकरणयोश्च इस सूत्र से कर्ण अर्थ में लुट प्रत्यय हुआ है। कर्णम साधकत्वम क्षेत्र गात्रेन्द्रियस्वपि इत्यमरः पटूनि कर्णानि येषां तैः विकट बहुभिः प्राणभिः प्राणाः सन्ति येषां तैः प्राणिनि अरवर प्राणिन प्राणी तु चेतनो जन्मि जन्तु जन्यु शरीरिणः इत्यमरः प्रापणीयाः प्रापयितुं योग्याः क्षन्त इति सन्देशाः सन्धन्दिस् धनघय सन्देशाः एव अर्थाः। यहाँ पर मयूर व्यंशकादयश्च इस सूत्र से रूपक समास हुआ है। औत्सुक्यात् उत्सुकस्य भावः कर्म वा औत्सुक्यम् तस्मात् उत्सुक शब्द से गुणवचन ब्रह्मणादिभ्य कर्मणि च इस सूत्र से स्यं प्रत्यय हुआ है। इष्टार्थोद्युक्तः उत्सुकः इत्यमरः अपरिगणयन् परिगणयतीति परिगणयन् परि उत्तर पूर्वक गण धातु से इस सूत्र से लटह सत्रिशान चाव प्रथा मासानाधिकरणे इस सूत्र से लट की अनुवृत्ति होने पर भी लट का विधान करने से प्रथमा के समानाधिकरण में भी सत्रि प्रत्यय हुआ है। न परिगणयन नय इस सूत्र से नय समास होकर नलोपो नय इस सूत्र से नकार का लोप हुआ है। गुह्य का गुहति जैकट में निधिम रक्षति इति गुह्यकः सवर्णार्थक गुहु धातु से रणबुल त्रिचौ, इस सूत्र से रणबुल प्रत्यय और प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम, इस सूत्र से यक आगम होकर इस शब्द की साधुता होती है। विद्याधरापसरो यक्ष यक्षो गंधर्व किन्नराः, पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोमी देवयोनेह। अमर सिंह ने इस श्लोक में देव योनियों के भेद में यक्ष और गुह्यक दो शब्दों का पृथक निर्देश किया है, अर्थात इनको पर्यायवाचक व्याकरण में समानार्थक नहीं माना है, परंतु महाकवि कालिदास ने मेघदूत के प्रथम श्लोक में यक्ष और प्रस्तुत पंचम श्लोक में गुह्यक लिखकर इन दोनों पदों को पर्यायवाचक मान लिया है। इस प्रकार अमरकोश के साथ इसका विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान यह है कि यहाँ पर गो बलिवर्धन न्याय से इन दोनों पदों का भेद किया गया है, अर्थात गो पद का अर्थ गाय भी है और बलिवर्ध व्याकरण में बैल भी है। बलिवर्ध व्याकरण में बैल में धेनु रूप गो का भेद है, परंतु बलिवर्ध रूप गो का अभेद है। जैसा कि निधिम रक्षन्ति ये रक्षास्ते शिरगुह्यक संज्ञकाः, कोशकार ब्याडी की इस उक्ति के अनुसार निधि की रक्षा करने वाले यक्ष को गुह्यक कहते हैं। इस प्रकार यक्ष और गुह्यक में सामान्य विशेष भाव प्रतीत होकर विरोध का परिहार हो जाता है। अतः मेघदूत का संदेष्टा यक्ष निधि रक्षक होगा, इसलिए उसे गुह्यक कहने में कुछ भी अनुचित्य नहीं है। ये आचे यांचार्थक याच धातु से परोक्ष अर्थ में लिट हुआ है। ही हेतावा धारणे इत्यमरह कामार्ता कामेन आर्ता व्यकरण में तृतीया तत्पुरुष चेतना चेतनेसु चेतनाश्च अचेतनाश्च तेसु व्यकरण में द्वंद्वः, यहाँ पर विषय में सप्तमी हुई है। प्रकृति कृपणा प्रकृत्या कृपणा, यहाँ पर प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। कामार्थ के विषय में अन्यत्र भी कहा गया है, न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति, मंदोन्मत्ता न पश्यन्ति ह्यर्थी दोष न पश्यति। मेघ को धुआं तेज जल और वायु का समूह रूप कहने से महाकवि कालिदास रसायन शास्त्र में भी दखल रखते थे, ऐसा जाना जाता है। इस श्लोक में पूर्वार्ध के प्रथम और द्वितीय चरण में मेघ और संदेश दो विरूप पदार्थों का संगठन होने से विरूपयो संघटना याच तद विषमम मतम, साहित्य दर्पण की इस उक्ति के अनुसार विषमालंकार हुआ है। इसी तरह चतुर्थ चरणस्थ सामान्य अर्थ से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरण न्यास हुआ है। इस प्रकार दोनों अलंकारों का अंगांगी भाव रूप संकर अलंकार हो गया है। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त कानाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्चामोघाबरमधिगुणे नादमे लब्धकामा। अन्वयः विकट में हे मेघ, त्वाम भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातम कामरूपम मघोनः प्रकृति पुरुषम जानामि तेन विधिवशात् दूरबन्धु अहम् त्वयि अर्थित्वं गतः अधिगुणे यांचा मोघा अपि वरम अधमे लब्ध कामा अपि न जकट में वरम। व्याख्या इदानीं यांचा प्रकारं प्रतिपादयति जातम इति, जकट में हे मेघ हे जलद, त्वां भवन्तं भुवन विद्ते लोकज्ञाते पुष्करावर्तकानां पुष्करावर्तक नाम धेयानां मेघानां वंशे कुले जातम उत्पन्नम महाकुल प्रसूतिम इति भावः, काम रूपम इच्छाधीन शरीरम दुर्गादि संचार समर्थम इति भावः, मघोनः इंद्रस्य प्रकृति पुरुषम प्रधान पुरुषम जानामि वेद्मि तेन तव महाकुल प्रसूतत्वेन कारणेन विधिवशात् भाग्याधीनत्वात् हेतोः दूरबंधु वियुक्त पत्निकः अहम् यक्षः त्वयि भवति विषये अर्थित्वं याचकत्वं गतः प्राप्तः अधिगुणे याचनायः सर्वथा प्यौचित्यं प्रतिपादयति याञ्चेति अधिगुणे पुरुषे विषये याञ्चा याचना मोघा अपि निष्फला अपि वरम ईशत्वियम धातुर्गुण संपन्नत्वात् प्रियत्वम यांचा वैफल्याद् दिशत्वियत्वम इति भावः। एतद् वैपरीत्येन अदमे निर्गुणे रूप पुरुषे लब्ध कामा अपि सफला विलासा अपि यांचेत् शेषः न वरम ईशत्वियम अपि न भवति इत्यर्थः। भावार्थः हे मेघ अहम त्वाम जगत प्रसिद्धे पुष्करावर्तकानां कुले प्रसूतम कामरूपिणम इंद्रस्य प्रधान पुरुषत्वेन वेद्मि। अतो भाग्यवशात वियुक्त पत्नी कह कोहम त्वयि याचकत्वेन उपस्थितः। अधिक गुणे पुंस याचना निष्फलापि ईषत् प्रिया एतद् वैपरीत्येन अदमे सा सफला सत्यप ईषदपि न प्रिया। अनुवाद हे मेघ मैं जानता हूँ कि तुम लोक विख्यात पुष्कर और आवर्तक नाम वाले मेघों के कुल में उत्पन्न और अपनी इच्छा के अनुसार रूप लेने वाले तथा इंद्र के प्रधान पुरुष हो। इस कारण से दुर्भाग्यवश पत्नी से बिछुड़ा हुआ मैं तुमसे याचना करता हूँ, क्योंकि अधिक गुण वाले पुरुष से की गई याचना निष्फल होने पर भी कुछ अच्छी है, परंतु निर्गुण पुरुष से की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं होती। टिप्पणी भुवन विद्ये भुवनेषु विद्यते व्याकरण में सप्तमी तत्पुरुष विद्यते यहाँ पर ज्ञानार्थक विद्य धातु से निष्ठा। इस सूत्र में भूतार्थ में एकता प्रत्यय हुआ है। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र से एकता प्रत्यय करेंगे तो इक्तस्य च वर्तमान इस सूत्र से भुवन शब्द से षष्ठी विभक्ति होगी। तब इक्तेन च पूजायाम इस सूत्र से समास निषेध होकर भुवना नाम विद्यते ऐसा व्यस्त व्यकट में असमस्त रूप होगा। पुष्करावर्तका नाम पुष्कराश्च आवर्तकाश्च पुष्करावर्तका तेषाम व्यकट में द्वंद्व। महोपाध्याय मल्लिनाथ के मतानुसार यह व्युत्पत्ति है। इसी प्रकार से उन्होंने कुमार संभव द्वितीय सर्ग के जकट में तदीयास्तोयदेशवद्य पुष्करावर्तकादिशु इस श्लोक में भी पुष्करावर्तक पद को द्वंद्व समासांत बनाया है। प्रलय समय में संहार करने वाले मेघों को पुष्करावर्तक कहते हैं। इस प्रकार पुष्कर और आवर्तक मेघों में श्रेष्ठ पुरुष माने गए हैं, परंतु एक ही पुरुष मेघों के दो विभिन्न वंशों में कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसी आशंका कर कुछ लोग वाचस्पत्य में उद्धृत विष्णु पुराण के पुष्करा नाम ये मेघा बृहंतस्तायमत्सरा पुष्करावर्तकास्ते न कारणे नेह शब्दिता। इस श्लोक के अनुसार पुष्करम व्यकरण जलम आवर्तयन्तीति पुष्करावर्तकाः व्यकरण पुष्कर धन आंग धन वृत्त धन ऋणबुल ऐसी व्युत्पत्ति करते हैं, अर्थात पुष्कर नाम के मेघ जल का आवर्तन व्यकरण भ्रमण कराने से ही पुष्करावर्तक शब्द से कहे गए हैं। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी मेघों के नायक विशेष को पुष्कर कहा है। मातृवंश और पितृवंश के प्रधान पुरुष पुष्कर और आवर्तक हो सकते हैं और उनकी संतति के तौर पर भी प्रकृति यक्ष मेघ को संबोधन कर सकता है। इस प्रकार मल्लिनाथ के व्याख्यान में अनुपत्ति नहीं हो सकती है। जातम जन धन अक्तः काम रूपम कामः इच्छा अस्ति यस्मिन् तत् कामम यहाँ पर काम शब्द से असादिभ्यो अच इस सूत्र से अच प्रत्यय हुआ है। कामम इच्छानुसारी रूपम यस्य तम विकर्ण बहुव्रीहि अथवा कामेन रूपम यस्य विकर्ण व्यधिकरण बहुव्रीहि। इस विशेषण की सार्थकता आगे के पुष्प मेघ कृतात्मा विकर्ण व्यधिकरण बहुव्रीहि इस विशेषण की सार्थकता आगे के पुष्प मेघी कृतात्मा श्लोक 43 इस विशेषण में मिलती है। प्रकृति पुरुषम प्रकृतौ व्यकरण में पौर वर्गे पुरुषः प्रधानम तम व्यकरण में सप्तमी तत्पुरुष जानमि ज्ञा धन लट धनमिप विद्वशात विधे वशः तस्मात् व्यकरण में षष्ठी तत्पुरुष दूर बंधु बदनाति मनः स्नेहादिना इति बंधु बंध धन उह दूरे बंधु यस्य सह व्यकरण में अधिकरण बहुव्रीहि त्वयि विषय सप्तमी अर्थित्वम असन्निहितः अर्थः अस्चास्तीति अर्थी यहाँ पर अर्थांचा सन्निधिते इस सूत्र से अर्थ के असन्निधान में अर्थ शब्द से इनी प्रत्यय होता है। अर्थ धन इनी बराबर अर्थिन प्रकरण में अर्थी अर्थ के सन्निधान में इसका प्रत्युदाहरण मतुप प्रत्यांत अर्थवान शब्द बनता है। इस प्रकार जिस का अर्थ नहीं है वह अर्थी याचक और अर्थ वाले को अर्थवान कहते हैं। अर्थिनः भावः अर्थित्वम् ततः यहाँ पर अर्थिन शब्द से भाव अर्थ में तस्य भावः सतलौ इस सूत्र से त्व प्रत्यय होकर त्वान्तम् क्लीबम् इस लिंगानुशासन सूत्र से क्लीब विकट में नपुंसक लिंग वाला अर्थित्वम् निष्पन्न होता है। गतः बराबर गम धन इक्तः अधिगुणे अधिगुण यस्य तस्मिन् विकट बहुव्रीहि यांचा याचनम यांचा याचनार्थक याच धातु से यज याचित विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग इस सूत्र से नंग प्रत्यय होकर स्तुष्ट नष्टु इस सूत्र से चुत्व विकट में या और अजातृष्टाप इससे टाप विकट में अप्रत्यय होकर अंचा पद बनता है। इसको यांचा कहना अशुद्ध है। वरम देवाद दृत्यवर श्रेष्ठे त्रिशुक्लीवे मनाक प्रिय इतमर लब्ध काम लब्धा कामो ययासा विकर्ण बहुव्रीहि इस श्लोक का अनुरूप भाव अन्यत्र भी देखिए। इत्याश्वासाद विमत विधौ कामये ताम नियोक्तुम न्यस्तः साधियसि सफलता अमर्थ भारो हि धत्ते विकर्ण में उद्धव संदेश। तोहम दुखार्ता शरणम अबला त्वाम गतवती न भिक्षा सत्पक्षे भजत ही कदाचित विफलताम विकट में हंसदूत। इस श्लोक में चतुर्थ चरणस्थ सामान्य अर्थ से अर्थित्व गमनाख्य रूप इस श्लोक में चतुर्थ चरणस्थ सामान्य अर्थ से अर्थित्व गमन रूप विशेष अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतरण न्यास अलंकार है।